ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। I took one special verse from Gajendra Moksha prayers. Recite this one. ये आठवें स्कंद के तीसरे अध्याय के बीसवां श्लोक है। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम् वांछन्ति एवै भगवत् प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्रमग्ना। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम् वांछन्ति एवै भगवत् प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्रमग्नाः। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम् वांछन्ति एवै भगवत् प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्रमग्नाः। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम् वांछन्ति एवै भगवत् प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्रमग्नाः। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम् वांछन्ति एवै भगवत् प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्रमग्नाः। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम् वांछन्ति एवै भगवत् प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्रम्। वैष्णवीस्, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम् वांछन्ति एवै भगवत् प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्रमग्नाः। कांतिनो यस्य न कंचनार्थम् वांछन्ति एवै भगवत् प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्रमग्नाः। एकांतिनः अनन्य भक्त, जिन्हें कृष्ण चेतना के अतिरिक्त अन्य कोई चाह नहीं रहती। यस्य, जिस भगवान का ना नहीं कंचन कुछ अर्थम आशीष वांछन्ति इच्छा करते हैं, ये जो भक्त वही निस्संदेह भगवत प्रपन्नाः भगवान के चरण चरण कमलों में पूरी तरह शरणागत अति अद्भुतम जो अद्भुत हैं, तच्चरितम् भगवान के कार्यकलाप, सुमंगलम् तथा जो सुनने में अत्यंत शुभ है, गायंतः कीर्तन तथा श्रवण द्वारा, आनंद दिव्य आनंद रूपी समुद्र, समुद्र में मग्नाह डूबे हुए। इसके साथ और भी एक श्लोक जोड़ा है, तमक्षरम ब्रह्म परंपरेशम अव्यक्तमाध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्म इवाति दूरम अनंतमाद्यम परिपूर्णमीडे। इन दो श्लोकों का अनुवाद इस प्रकार है, ऐसे अनन्य भक्त जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई चाह नहीं रहती, वे पूर्ण शरणागत होकर उनकी पूजा करते हैं और उनके आश्चर्यजनक तथा शुभ कार्यकलापों के विषय में सदैव सुनते तथा कीर्तन करते हैं। इस प्रकार वे सदैव दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। ऐसे भक्त भगवान के कोई वरदान नहीं मांगते, किंतु गजेंद्र बोल रहे हैं, किंतु मैं तो संकट में हूँ, अतएव मैं उन भगवान की स्तुति करता हूँ जो शाश्वत रूप में विद्यमान है, जो अदृश्य हैं, जो ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के भी स्वामी हैं और जो केवल दिव्य भक्ति योग द्वारा ही प्राप्य हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वे मेरी इंद्रियों की पहुंच से तथा समस्त बाह्य अनुभूति से परे हैं, वे असीम हैं, वे आदि कारण हैं और सभी तरह से पूर्ण हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद के द्वारा, श्री प्रभुपाद की अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तम। मनुष्य को चाहिए कि भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति अनुकूल होकर तथा सकाम कर्म या ज्ञान द्वारा किसी भौतिक लाभ की इच्छा के बिना करे, यह शुद्ध भक्ति कहलाती है। अन्य भक्तों को भगवान से कुछ भी नहीं मांगना होता, अनन्य भक्तों को भगवान से कुछ भी मांगना नहीं होता, किंतु गजेंद्र परिस्थितिवश अविलंब वर मांग रहा था, क्योंकि उसके समक्ष रक्षा का कोई अन्य उपाय नहीं था। कभी कभी जब कोई विकल्प नहीं रहता तो शुद्ध भक्त भगवान की कृपा पर पूर्ण रूपेण आश्रित रहने के कारण किसी न किसी वर के लिए प्रार्थना करता है, किंतु ऐसी प्रार्थना में खेद भी व्यक्त किया जाता है। जो भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में सदैव श्रवण तथा कीर्तन करता है वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहता है, जहाँ किसी भी भौतिक लाभ की याचना नहीं करनी पड़ती। जब तक कोई नितांत शुद्ध भक्त नहीं होता तब तक वह संकीर्तन आंदोलन के कीर्तन करने तथा नाचने से मिलने वाले दिव्य आनंद का भोग नहीं कर सकता। ऐसा आनंद सामान्य भक्तों को मिलना संभव नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिखलाया है कि किस तरह भाव विभोर होकर कीर्तन श्रवण तथा नृत्य मात्र के द्वारा दिव्य आनंद उठाया जा सकता है, यही भक्ति योग है। अतएव गजेंद्र ने कहा, आदमी आध्यात्मिक योग गम्यम, जिससे सूचित होता है कि जब तक कोई इस दिव्य पद पर स्थित न हो तब तक वह भगवान के पास तक नहीं पहुंच सकता। भगवान के पास पहुंच सकने का वर अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त होता है, फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह वर सबों को प्रदान किया है, उन पतितात्माओं तक को जिसके जिनके पास आध्यात्मिक जीवन की कोई भी विरासत नहीं है। वास्तव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ऐसा ही देखा जाता है। अतएव भक्ति योग का मार्ग ही वह निर्मल विधि है जिसे भगवान तक पहुंचा जा सकता है। भक्तिया अहमेकया ग्राह्य है, केवल भक्ति के माध्यम से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। भगवान गीता में कहते हैं, मैं यासक्त मना पार्थ योगम युन जन्मदाश्रय असंशयम समग्रम्माम यथा ज्ञासति तत्सुनो। हे प्रतापुत्र अर्जुन, अब सुनो कि किस तरह मेरी भावना से भावित होकर योगाभ्यास करने और मन को मुझमें अनुरक्त करने से तुम मुझे पूरी तरह संशय रहित होकर जान सकते हो। मात्र कृष्ण भावनामृत से अनुरक्त अनुरक्त होने तथा निरंतर कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन से मनुष्य भगवान को संशय रहित पूरी तरह जान सकता है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुःउन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगिराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानोसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकांतिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नाः अति अद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्रमग्नाः। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण बात बताया जा रहा है कि इस दुनिया में सब लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, नहीं तो देवी देवताओं को छोड़ो मनुष्यों के पास भी जाकर शरण लेते हैं विविध तरह की याचना करने के लिए। लेकिन इस दुनिया में लोगों के अंदर देने का आदत नहीं होता, सिर्फ लेने का आदत होता है। कभी कभी देवी देवताओं के पूजा में इतना रीति रिवाज होते हैं, वो इतने रीति रिवाज करने के बाद उनको थोड़ा बहुत मिलता है लोगों को। इसको बताया गया है कि अगर कोई देवता बोलेगा आपको तुम अमृत लेके आओ, मैं हम पानी देंगे आपको, तो उसमें कितना प्रयास है, उसमें इस तरह का प्रयास है। इस तरह से अगर हम मनुष्यों का भी हम आश्रय लेते हैं इस दुनिया में, वो भी लोग बहुत सोच सोच कर थोड़ा थोड़ा ही देते हैं, ज्यादा देते नहीं है। जैसे कंपनी में कभी कभी बड़ा सैलरी दिया जाता है, लेकिन इतना कटौती होता है, इनकम टैक्स होता है, सेल्स टैक्स होता है, ये टैक्स वो टैक्स, बहुत कटौती करते हैं लोग। कटौती से बचने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं लोग है? तो पसीना छूटने के बाद भी, कठोर परिश्रम करने के बाद भी, मंडे टू फ्राइडे काम करने के बाद भी लोगों को कंपनी बहुत उदार होकर नहीं देता है। लेकिन भगवान का एक नाम है वरद ऋषभ, इसका मतलब है भगवान इंतजार कर रहे हैं सब लोगों को अनेक तरह के विविध वरदानों को देने के लिए। और भगवान के खजाना में इतने वरदान हैं, कुछ कमी नहीं है, इतना तक कि हम थोड़ा भी भक्ति कर ले उनकी, वो बहुत बड़ा वरदान दे देते हैं भगवान और कुछ भी हिचकिचाहट के बिना। कभी कभी जो मांगने वाला जो है उसके कम बुद्धि के कारण वो करता है कठोर परिश्रम, लेकिन मांगने की बुद्धिमता नहीं है उसके पास। जैसे आपको मालूम है जो वामन देव जा पहुंचे बले महाराज के पास और तीन पांव मांगे, तो बले महाराज को बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे ब्राह्मण, तुम इतने छोटे बच्चे हो, तुम्हारे तीन पांव में कितना जमीन मिलेगा तुम्हें? वो वामन देव बोले, नहीं, हमको तीन पांव चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो बलि ने बोला कि देखो, तुम ब्राह्मण हो, संतुष्ट हो, मैं मानता हूं, लेकिन आगे जाकर तुम बड़े हो जाओगे, शादी होगा, संसार बढ़ जाएगा, बच्चे आ जाएंगे, और भी तुमको जमीन की जरूरत पड़ने की संभावना है, तुमको उस समय चाहिए तो तभी शायद मिल नहीं पाएगा तुमको, इसलिए जब मांगने के मौका मिलता है खूब मांग लो, इतना कम मत मांगो, चाहिए तो मैं कुछ गांव दे दूंगा, कुछ शहर दे दूंगा, कुछ प्रदेश दे दूंगा तुमको। इस तरह बलि महाराज ने सोचा कि अगर हम देने वाले हैं, अगर इतना कम तीन पांव देंगे तो लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, लोग भी सोचेंगे कि अरे मांगने वाले के पास अकल नहीं है तो देने वाले के पास अकल होना चाहिए, इतने बच्चे को थोड़ा देकर भेज दिया बोलेगा। इसलिए बलि महाराज ने बोला कि और कुछ मांग लो, ऐसे बोले तो। लेकिन भगवान तो एक लीला कर रहे थे उनके साथ, सारे दुनिया के तीनों लोगों को माप लिया उन्होंने अपने तीन पांव में। लेकिन भगवान जो होते हैं वो एकदम उदार हैं, सब कुछ देने में सक्षम हैं, इतना तक कि क्या स्वर्गवास की बात, क्या अपवर्ग की बात भी नहीं, लेकिन अपने आप को भगवान दे देते हैं अपने भक्तों को। लेकिन वो किन भक्तों को अपने आप को भगवान दे देते हैं वो इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो एकांतिनो यसना कंचनार्थम, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो गुणात्मक रूप से देखा जाए तो उनकी चेतना भी भगवान की चेतना जैसा ही है, वो भी बहुत उदार होते हैं और किसी भी भौतिक प्रलोभनों का आसक्ति इनके मन में नहीं रहता है। इस दुनिया में लोग एक घर में रहते हैं लेकिन सोचते हैं कि और कुछ बड़ा घर मिल जाए अच्छा होगा, ऐसे सोचते हैं। कार है तो लोग सोचते हैं कि छोटा कार हो गया और बड़ा चाहिए, मोबाइल है तो रीसेंट मॉडल का मोबाइल चाहिए, और नया मॉडल निकला है मार्केट में। इस तरह इस दुनिया में हम देख सकते हैं कि लोग एक पदार्थ मिल गया तो और कुछ ऐसी सुविधा चाहिए जो हमको और सुख दे सकता है, इस तरह के लोग ढूंढते हैं। इसका मतलब है जो उनके पास है वो सुख नहीं दे रहा है उनको, इसलिए और सुखी बनाने वाला कोई चाहिए उनको। इसलिए देखा जाता है कि इस दुनिया में सब लोग सुखी बनने के लिए अनेक चीज करते हैं। जैसे एक एक पुरुष शादी करता है एक स्त्री से ताकि वो सुखी बने, नहीं तो पति पत्नी वो बच्चे पैदा करते हैं ताकि बच्चा उनको थोड़ा सुख देगा। सुख की तलाश में, सुख की अपेक्षा में ही लोग इस दुनिया में परिश्रम करते हैं। लेकिन देखा जाता है कि किसी भी विषय में सुख भी मिले वो क्षणिक सुख होता है, कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद और अपेक्षाएं बढ़ जाता है, इस तरह उनके लिए शाश्वत सुख नहीं मिलता है। तो ऐसे हम गहराई से सोचे कि क्या सुख मुझे प्राप्त हुआ जीवन में जो शाश्वत है, जिसका वर्धन होता जाता है, उसका सीमा ही नहीं है, ऐसा क्या सुख है? अगर कोई इंसान देखेगा, भौतिक दुनिया के कोई भी पदार्थ के अंदर इस तरह का क्षमता नहीं है जो इस तरह के सुख वो दे सके, क्योंकि इस भौतिक पदार्थों से बनाए हुए सब चीज इस दुनिया में वो सिर्फ क्षणभंगुर हैं, वो क्षणिक सुख देते हैं। लेकिन भगवान के महान भक्त ये बात समझ लेते हैं कि इतना तक कि स्वर्ग भी हो अपवर्ग भी हो वो शाश्वत सुख को प्रदान नहीं कर सकता, इसलिए जो परम सत्य भगवान हैं, जो खुद ही शाश्वत हैं, जिनकी जो गुणालय हैं, गुणों का सागर हैं, दिव्य गुणों का सागर हैं भगवान हैं, और जिनके बारे में शास्त्र में वर्णन है, जैसे भागवत में एक उदाहरण दिया है अंतर्यामी परमात्मा के संबंध में। अंतर्यामी जो है हमारे हृदय में, बैठे हैं जो परमात्मा, वो एक लकड़ी के काष्ठ के अंदर जो आग होता है उसके बराबर है। अभी देखिए काष्ठ का उदाहरण क्यों दिया है, ये लकड़ी का। अभी लकड़ी के अंदर जो आग है वो बंधा नहीं गया है, जो आग जलेगा तो वो पूरा लकड़ी को भी वो जल जल कर राख बना देगा। वो शक्ति है वो आग, इसलिए उदाहरण दिया है। इस तरह परमात्मा की साक्षात्कार जिस व्यक्ति को हो जाता है उसके भौतिक पदार्थ जो है वो सब मिट जाते हैं, उसके खत्म हो जाते हैं। हालांकि हो सकता है कि उसके भौतिक शरीर है, भौतिक मन बुद्धि इंद्रिय हैं, लेकिन उनमें किसी भी तरह का त्रुटि नहीं है, दूषित भावनाएं नहीं है, क्योंकि परमात्मा के साक्षात्कार उस व्यक्ति के भौतिक पदार्थ को खत्म कर देता है, वो भौतिक चेतना से ऊपर उठ जाता है ऐसे व्यक्ति उनकी साक्षात्कार से। तो गजेंद्र का इधर ये प्रार्थना जो हम पढ़ रहे हैं, ये प्रार्थना में गजेंद्र बोल रहा है कि अनेक देवता सामने खड़े हैं लेकिन मैं उनसे कुछ मांगना नहीं चाहता। हालांकि देवता लोग सक्षम थे गजेंद्र को पानी से बाहर खींचने के लिए और मगरमच्छ से उनको बचाने के लिए, वो कर सकते थे, वो बड़ी बात नहीं था, लेकिन गजेंद्र उनका शरण नहीं लिया। कारण क्या है आगे हम पढ़ेंगे एक श्लोक में। हे भगवान, ये शरीर को मैं बचा कर रखना नहीं चाहता, मुझे आप अपने सान्निध्यता दे दीजिए, आपकी नित्य सेवा दे दीजिए हमको, हम आपके लोक में आना चाहते हैं जिधर सब कुछ शाश्वत है। क्योंकि अगर मुझे ये हाथी का शरीर बचा कर मैं रखूंगा, अभी आज मगरमच्छी पकड़ा कल कोई और पकड़ेगा, ये तो दुख तो एक के बाद एक आते रहते हैं समुद्र की लहरों जैसे, इसलिए हम नहीं चाहते कि इसी शरीर में टिके रहे और कुछ सालों के लिए। हम चाहते हैं कि संसार ही छूट जाए, हम आपके पदकमलों के आश्रय प्राप्त करें और आपकी सेवा में मग्न रहे। क्योंकि हमने देखा है कि आपके जो एकांत भक्त जो होते हैं वो आपके नाम रूप गुण लीला इत्यादि में रमते हैं, आनंत गायंत गायंत आनंद समुद्र मग्नाहा बोलते हैं, वो आनंद के समुद्र में डुबकी लगाते हैं। जैसे रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि जिस तरह अनेक नदियों में रहने वाले जलचर जो प्राणियां जैसे मछली वगैरह होते हैं, वो समुद्र की ओर जब नदी बहता है उस समय ये प्राणी भी समुद्र के अंदर घुस जाते हैं, और तभी उनको पता चलता है कि समुद्र इतना विशाल है, उधर डुबकी लगाते हैं और समुद्र की सीमा इतना बड़ा है, इसलिए वो हमेशा के लिए उसमें आनंद लूटते हैं। ये उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी शुद्ध भक्तों के लिए। शुद्ध भक्त कैसे हैं, समुद्र में रहने वाले डॉल्फिन हो नहीं तो शार्क हो उसके बराबर बताते हैं, वो बार बार उसमें डुबकी लगाते हैं और आनंद आनंद गायंत आनंद समुद्र मग्ना ऐसे बोलते हैं। इस दुनिया में भी समुद्र है जो कारा पानी का समुद्र है, वो समुद्र तो है बड़ा लेकिन कोई एक भी लोटा पानी पी नहीं पाएगा, वो कारा पानी है, कोई नहीं पी सकता है। लेकिन भगवत धाम में जो है भक्ति रस अमृत सिंधु, वो अमृत का समुद्र है, बड़ा समुद्र है भगवत धाम में, जो भक्ति रस का अमृत का समुद्र है वो। तो उस समुद्र में जाकर पहुंच जाएगा कोई जीव तो भगवान के भक्ति रस में डुबकी लगाएगा बार बार और आनंद प्राप्त होता है उससे, और उस आनंद का सीमा नहीं है। इसलिए हम लोग भी हम अपने अपने जीवन में हम ऐसे एक शाश्वत आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, उसका सौभाग्य मनुष्य शरीर में प्राप्त होता है। क्या है वो, तो बद्ध जीव जो बंधा गया है इस शरीर के अंदर, उस बद्ध जीव को जगाना और भगवान के साथ उसके दिव्य संबंध को पुनर्स्थापित करना। और शुरुआत में तो सब लोग भगवान से बिछुड़ कर बहिर्मुख होकर भाग दौड़ कर रहे हैं सुख की तलाश में इस दुनिया में, और ऐसे लोग विविध यातनाओं को प्राप्त करते हैं, और इस तरह करते करते अनेक जन्म मृत्यु चक्र को काट काट कर जीव बहुत तंग आ जाता है इस दुनिया में। उसके बाद बहुत जन्म के बाद वो साधु महात्माओं की सानिध्य प्राप्त होता है, सुनता है कि कभी भी घर में माँ बाप बोलते हैं अगर कोई लड़का बड़ा हाइपर टेंशन आ गया, उसको घर में बहुत प्रॉब्लम होता है, चिल्लाता है, झगड़ा करता है, तो माँ बाप बोलते हैं गुरु के पास जाकर आओ, मंत्र लेके आओ, ऐसे बोलते हैं गुरु के पास, क्योंकि उनको मालूम है कि गुरु ऐसे एक अवस्था में है जो वो भगवान के सानिध्यता में है और वो प्रशांत आत्मा है, आनंद में डूबे रहते हैं। तो ये लड़का जाएगा तो इनको भी थोड़ा आनंद मिलेगा उनसे, थोड़ा जाकर कुछ मंत्र लेकर आएगा, मंत्र जपेगा, मन शांत होगा, नहीं तो ये इसके अशांत अवस्था के कारण खुद को भी तकलीफ, दूसरों को भी तकलीफ दे रहा है। इस तरह भारत में लोग जानते हैं, इसलिए कभी कभी लोगों को मन में जब अशांति होता है वो गुरु जी के पास जाते हैं, नहीं तो मंदिर में जाते हैं लोग, इसलिए क्योंकि बद्ध अवस्था में हम भी दुख भोगते हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं। बद्ध अवस्था जो है वो मरीज व्यक्ति की अवस्था के बराबर है। मरीज अवस्था में अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया हो करके वो कफिंग करता रहेगा, इतना म्यूकस भी आएगा, खून भी आएगा उसका, उसको अंदर भी दर्द भी होता है, और घर वाले सब लोग सोचते हैं कि तो बार बार कफ करते रहता है, आवाज करता रहता है, सोने नहीं देता है रात को हमको, ऐसे वो लोग भी सोचते हैं, और उसके निकट भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनको भी पकड़ लेगा वो दवाई भी देना होता है, दूर से देना होता है उसको, निकट नहीं जाना होता है, तो उस खुद को भी तकलीफ, दूसरों को भी तकलीफ हो। लेकिन तंदुरुस्त अवस्था में व्यक्ति सुखी रह सकता है, दूसरों को सुख दे सकता है वो। इस तरह जब हम भगवान के साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है तो हम तंदुरुस्त हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, नहीं तो तब तक इस दुनिया में विविध तकलीफों को हम भोगना पड़ता है हमें। तो एक इस दुनिया जैसे हम बता रहे थे कि ये भगवान के साथ संबंध को जब हम जागृत करते हैं तभी हम सही आनंद को प्राप्त करेंगे। देखिए इस दुनिया में हम संबंध जोड़ते हैं दूसरे लोगों से सुख की अपेक्षा करते हुए। कोई व्यक्ति है कंपनी के साथ संबंध जोड़ता है, सोचता है कि बड़ा वेतन देंगे, बड़ा पदवी देंगे, हम सुखी बनेंगे। तो कंपनी वाले सोचते हैं कि आओ आओ अभी तुमको हम शोषण करके तुमसे 5 लाख कमाएंगे, तुमको 5,000 रुपये देंगे तुमको, ऐसे वो लोग सोचते हैं ऐसे। तो इस तरह शुरुआत में संबंध बहुत अच्छा होता है, धीरे धीरे वो संबंध से बहुत तकलीफ प्राप्त होता है उसको। इस तरह स्त्री पुरुष का संबंध हो, नाता रिश्ता का संबंध हो, इस दुनिया में किसी के साथ भी संबंध हो, संबंध से तकलीफ बढ़ता है। लेकिन भगवान ऐसे एक व्यक्ति हैं कि जिनके साथ संबंध जोड़ने से परम कल्याण प्राप्त होता है व्यक्ति को। जैसे बताते हैं अति अद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम, भगवान मंगलमय हैं, उनके साथ जो भी संबंध जोड़ता है उनको भी मंगल प्राप्त होता है, शुभ प्राप्त होता है। भगवान की चरित्र ही ऐसा है। जैसे सुत गोस्वामी को संबोधित करते हुए शौनकादि ऋषि बता रहे हैं एक श्लोक में, दो श्लोक हैं, देयर आर टू श्लोक वेरी सिमिलर टाइप ऑफ श्लोक, महत्तमांतर महत्तम एकांत परायणस्य नान्तम गुणानाम अगुणस्य जगमुर योगेश्वराये भवपाद्म मुख्या, ये बाहर पहला श्लोक में आता है। दूसरे श्लोक में बताते हैं तन्नो भवान वै भगवत प्रदानो महत्तम एकांत परायणस्य हरेरुदारम चरितम विशुद्धम शुश्रूषताम नो वितनो तो विद्वन। बताते हैं कि हे सुत गोस्वामी, हम लोग शुश्रूषताम हैं और आप भागवत प्रदान हैं। आप भागवत प्रदान का मतलब है आपकी वचन जो होता है वो प्रवचन होता है। वो प्रवचन का मतलब है जो गुरु परंपरा में हम सुनते हैं उसको ही हम दोहराते हैं। और आप भागवत प्रदान हैं क्योंकि आपके आपके कथा में प्राधान्यता आप देते हो भगवान को, और आपका जीवन पूर्ण रूपेण समर्पित है भगवान के पदकमलों में, इसलिए आप योग्य व्यक्ति हो हमको सिखाने के लिए। और हम लोग शुश्रूषताम, हम सुनने के लिए बहुत आतुर हैं आपसे। और महत्तम एकांत परायणस्य का मतलब है आप महात्मा पुरुष हो और आप एकांत परायण हो, जिसका मतलब है आप भक्ति को छोड़कर बाकी भौतिक पदार्थों में आप रुचि नहीं लेते हो। कभी कभी भक्तिमय जीवन में भी अगर किसी को प्रवचन करना हो, भक्ति में सेवा करना हो, कभी कभी लोग अनेक मसालों को जोड़ते हैं उसके साथ। उसका कारण है वो दुनिया में भी कुछ नाम यश प्राप्त करना चाहते हैं, वो दुनिया में भी मशहूर बनना चाहते हैं, नहीं तो पैसा कुछ कमाना चाहते हैं, ऐसे अनेक कारणवश हैं। लेकिन महत्तम एकांत परायणता का मतलब है भगवान के दिव्य सेवा को छोड़कर बाकी किसी भी चीज में रुचि न लेना। इसलिए महत्तम एकांत परायण से हरेर उदारम चरितम विशुद्धम, यही बात बताया जा रहा है उधर। भगवान हरि उदार हैं, उनके चरित्र जो है उसको सुनने से पता चलता है कि वो भगवान हरि कितने उदार हैं। हरेर उदारम चरितम विशुद्धम, शुद्ध है। इधर वही बताया जा रहा है अति अद्भुतम तत्चरितम सुमंगलम, ऐसा बताया गया है इधर। तो इस तरह के चरित्र को सिखाने वाले उनको वैष्णव बोलते हैं। आप देखेंगे कोई भी वैष्णव हो वो सर्वप्रथम अपने शिष्य को सिखाएंगे कि ये आत्मा जो है ये अजर है, अमर है, शरीर से भिन्न है। और हम लोग सर्वप्रथम देखा जाए तो हम अपने शरीर से आकर्षित होते हैं, क्योंकि जब आईने के अंदर देखते हैं हम शरीर को देखते हैं। क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि शरीर के अंदर एक आत्मा बैठा है। जब आत्मा निकल जाता है कोई भी शरीर से आकर्षित नहीं होगा। जैसे अगर कोई जितना भी खूबसूरत व्यक्ति हो लेकिन आत्मा निकल गया तो शरीर सड़ जाता है, 6 घंटे में 8 घंटे में बस उसको लोग जला देते हैं उसको। लेकिन जब आत्मा रहता है तभी सुंदर सुंदरता दिखता है, एक तरह का चमक शरीर में रहता है। तो हम लोग शरीर से आकर्षित होते हैं क्योंकि आत्मा है शरीर में। तो आत्मा होने से कारण क्या, आत्मा से हम क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि आत्मा परमात्मा का एक अंश है, भगवान का एक अंश है, इसलिए हम आत्मा से आकर्षित होते हैं। तो ठीक है, अगर हम आत्मा भगवान का अंश है तो क्यों हम आकर्षित होते हैं आत्मा से? क्योंकि भगवान बहुत सर्व आकर्षक है। उनका नाम जो है कृष्ण, कृष्ण कृष्ण का ही मतलब है सर्व आकर्षक। भगवान बहुत आकर्षक है और उन वो आकर्षक होने के कारण उनके अंश भी आकर्षक होता है। उनके अंश आकर्षक होने के कारण जो भगवान का अंश आत्मा इस शरीर में बैठा हुआ है वो शरीर को भी आकर्षित बनाता है। वो इस तरह है। इस तरह बुद्धिमान लोग समझ जाते हैं कि अंततो गत्वा देखा जाए तो सर्व आकर्षक पदार्थ एक ही चीज है, वो वास्तव वस्तु है जो भगवान है। उनको छोड़कर बाकी किसी में भी आकर्षण नहीं है। अगर उन भगवान को छोड़कर हम आकर्षण होगा हमारे हृदय में किसी और चीज के लिए, उसको बोलते हैं कृष्ण इतरा, कृष्ण और कृष्ण इतरा। कृष्ण इतर पदार्थों में आकर्षण होगा तो बहुत समय टिकने वाला नहीं है, वो धीरे धीरे हम थक जाएंगे। देखिए एक लड़की गई अपने माता पिता के पास जाकर, बोली कि मुझे एक लड़के के साथ शादी करना है, हमने नक्की कर लिया है, डिसाइड कर लिया है, कहीं किसी और से नहीं करना है हमको शादी। माँ बाप बोले कि देखो तुम्हारा कैस्ट देखो, तुम हिंदू हो वो क्रिश्चियन है, कैसे तुम शादी करोगे? तो बोले कि या तो हमको शादी करने के लिए हेलो परमिशन दो, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। ठीक है, माता पिता बोले ठीक है आत्महत्या मत करो, जो करना कर लो, तुमको शादी करना तो कर लो। तो शादी कर ली, तो एक साल के बाद घर वापस लौट आ गए, बोले अभी हमको डाइवर्स करना है उसको। माँ बाप बोले कि इतना जल्दी डाइवर्स मत करो, एक ही साल हुआ, थोड़ा सहिष्णुता सीखो, शांत रहो, बार बार पार्टनर को बदलते मत जाओ। वो बोली अभी या तो डाइवर्स करने दो, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। तो माँ बाप को बहुत आश्चर्य हुआ। ये दुनिया का हाल ऐसा है, लोग इतना बहुत पहले पागल बनकर आकर्षित होते हैं और बाद में पागल बनकर डाइवर्स चाहते हैं। ऐसा दुनिया ऐसे है, इस दुनिया के आकर्षण ऐसा ही है। लेकिन भगवान भगवान की ओर जो जीव मुड़ेगा और सदगुरु के पद कमलों में आश्रय लेगा कोई, तो उनको जो जानकारी प्राप्त होता है भगवान के संबंध में, धीरे 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 वो आकर्षण बढ़ता जाएगा। जैसे प्रचेतों ने शिव जी से उनका मुलाकात हुई जंगल में, तो शिव जी आप देखेंगे सर्वप्रथम वो उनको भगवान विष्णु की सुंदर स्वरूप की वर्णन करते हैं। वो बोलते हैं कि दर्शनम नो दिदृक्षूणाम देही भागवतार्चितम रूपम प्रियतमम स्वानाम सर्वेंद्रिय गुणांजनम। वो बताते हैं कि मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि भगवान का वो सुंदर स्वरूप दर्शनम नो दिदृक्षूणाम, जो भगवान के भक्त हमेशा उस सुंदर रूप को स्वरूप को देखना चाहते हैं, उस रूप के बारे में मैं वर्णन करूंगा। रूपम प्रियतमम स्वानाम, वो प्रियतमम रूप है। इस तरह बोलकर उन्होंने भगवान के रूप का वर्णन किया। स्निग्ध प्रावृत घनश्यामम सर्व सौंदर्य संग्रहम चारु आयत चतुर्बाहुम सुजात रुचिराननम पद्म पत्र पलाशाक्षम सुंदर ब्रूसुनासिकम सुद्विजम सुकपोलास्यम समकर्ण विभूषणम। देखिये ये बता रहे हैं एक एक करके सुंदर तरीके से भगवान विष्णु के रूप को। ये बता रहे हैं कि जो बादल होता है, ग्लिसनिंग क्लाउड मीन्स देयर इज अ क्लाउड विच इज ऑल्सो शाइनिंग, वो चमकने वाला बादल के समान भगवान का सुंदर स्वरूप है। और उनके घुंघराले बाल हैं, और उनके चतुर्भुज रूप है, और उनके आंखें कमल के पंखड़ियों के बराबर है, और उनके कर्ण में एक मकर कुंडल है जो उनके गाल में चमक रहा है, और इस तरह उनके नासिका बहुत सुंदर है, और उनके जो दांत हैं जो बहुत सुंदर तरीके जैसे व्हाट यू से दिस जैस्मिन बर्ड्स, जैस्मिन यू नो जैस्मिन फ्लावर, यू डोंट नो जैस्मिन, चमेली, चमेली, इट्स लाइक अ सीरीज ऑफ जैस्मिन बर्ड्स। इस तरह उदाहरण इस तरह वर्णन दे रहे हैं। देखिए गुरु का मतलब है, नारद मुनि भी यही वर्णन दे रहे हैं ध्रुव महाराज को विष्णु का रूप कैसे होता है। आप पढ़िए देवहूति के पुत्र कपिला, वो देवहूति को वर्णन कर रहे हैं, यही वर्णन कर रहे हैं उनको, वो परमात्मा का रूप क्या है वो वर्णन करते हैं। और वो रूप को बोलने के बाद उसके बाद मंत्र देते हैं, ये मंत्र को उन्होंने रुद्र गीतम करके मंत्र को दिया उनको। इस तरह नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को ओम नमो भगवते वासुदेवाय उन्होंने मंत्र दिया ऐसे। तो भगवान का रूप बताते हैं, भगवान का नाम देते हैं, और जो भी तपस्या बताते हैं उस तपस्या भगवान को प्राप्त करने के लिए होता है, भगवान को आकर्षित करने के लिए। और बाकी जो भी प्राप्त करना हो जो व्यक्ति को, वो अपने आप मिल जाता है पूछे बिना एक व्यक्ति को ऐसे। तो इस तरह भगवान के नाम रूप और उसके बाद भगवान के गुण क्या क्या होते हैं वो वर्णन करते हैं, गुण का वर्णन, और उसके बाद भगवान की लीलाओं का वर्णन। इस तरह इन विषयों को सुनकर एक भक्त के जीवन में भगवान की ओर आकर्षण जागृत होता है। वो आकर्षण कैसे जागृत होता है, उसके आकर्षण पहले भगवान के भक्तों की ओर होता है, उसके बाद भगवान की ओर होता है। इसके संबंध में इसमें बताया है भागवत में कि भगवान के भक्तों में भी भगवान का गुण आ जाता है। इसका कारण क्या है, भगवान के लीला चेष्टा भगवान के गुणों के ऊपर ध्यान लगा लगा कर वो भगवान की ओर इस तरह का एक पागलपन होता है, दिव्य पागलपन, उसको दिव्य उन्माद बोलते हैं। उस दिव्य उन्माद में भगवान के दिव्य गुण भक्त के चित्त में प्रतिबिंबित होते हैं, इस तरह। तो इसके कारण भगवान सुहृद होते हैं, भक्त भी सुहृद बनता है, भगवान नम्र होते हैं, भक्त भी नम्र बनता है ऐसे। इसलिए तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रु, भगवान अजात शत्रु होते हैं, भक्त भी अजात शत्रु बनते हैं। अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषण, इस तरह। तो जैसे आपने सुना होगा कि गोपियों ने जब उद्धव से भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण की तो तुरंत वो लीलाओं को वो रचाने लगी वो, क्योंकि भगवान का स्मरण इतना बढ़ गया कि वो अपने शुद्ध बुद्ध सब खो बैठी और भगवान की लीलाओं का नकल करने लगी वो। इस तरह भगवान के लीलाएं उनके शरीर में प्रकट हुए, गोपियों के शरीर में। कोई गोपी बोले कि हे गोपी, एक दूसरे गोपी के कंधे के ऊपर चढ़ गई, बोले कि ये कालिया आज तुमको मैं दमन कर दूंगा ऐसे। और एक गोपी अपने साड़ी की कोने को लेकर बोला, सब गोपियों को बुलाया, हे ब्रजवासियों सब आ जाओ, इस पर्वत के आश्रय लो, तो इंद्र की कोप से डरो मत, ऐसे बोलकर अपने साड़ी को दिखा रहे ऐसे है। तो इस तरह गोपियां भगवान के लीलाओं से इतने प्रभावित होकर भगवान के कार्यकलापों का नकल करने लगे, चेष्टा करने लगे। इससे उद्धव को पता चल गया कि कितने ये गोपियों के चित्त भगवान के स्मरण में लीन हो गया, उन्होंने देखा ऐसे। इस तरह भगवान के लीलाओं को सुन सुन कर भक्त के हृदय में आश्चर्य उत्पन्न होता है, क्योंकि भगवान के कार्य जो होते हैं आश्चर्यजनक होते हैं। तो जितना भक्त आश्चर्य करता है भगवान के कृपा के बारे में सोचकर, भगवान के, देखिए भगवान में दो खास गुण हैं भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है। एक है भगवान की सुंदरता और दूसरा है भगवान की कृपा। जैसे आप सुनेंगे अनेक भक्तों ने भगवान के किसी न किसी एक सुंदर स्वरूप को देखकर मनमोहित हो गया और अपने सब थन मन धन सब भगवान को देने के लिए तैयार हो गए। जैसे रोज हम गाते हैं ना ये दामोदर की गीता, उसमें दामोदर की गीत में क्या गाते हैं, वो बोलते हैं कि व्हाट इज दैट वर्स इन विच ही सेज, मैं कुछ नहीं चाहता देखने को इसको छोड़कर, वरं देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेहं वरेषादपिह, इदं ते वपुर्नात गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरास्तं कि मन्ये। एक बता देंगे, इदं ते वपुर्नात गोपाल बालं, मैं गोपाल बाल और गोपाल नाथ, नाथम बोलते हैं, नाथ का मतलब है आप हमारे स्वामी हो, ईश्वर हो, लेकिन एक बाल रूप में आए हो, बाल रूप है आपका। देखिए उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, एक्सट्रीम नॉर्थ में जाएंगे आपको बद्रीनाथ मिलेंगे, दक्षिण भारत में कौन मिलेंगे आपको, रंगनाथ, और ईस्ट इंडिया में कौन मिलते हैं, जगन्नाथ, वेस्ट इंडिया में द्वारकानाथ, लेकिन सेंट्रल इंडिया तो लिटिल उत्तर ऊपर जाएंगे आपको गोपालनाथ मिलेंगे वृंदावन में। तो वो गोपालनाथ की पूजा करने की इच्छा करते हैं, क्योंकि गोपालनाथ के अंदर सब नाथ आ जाते हैं, बाकी सब नाथ उनके अंडर ही है, उनके अंदर है, इसलिए बोलते हैं इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, इसे बताते हैं सदा में मनस्या विरस्तम कि मन जय, और कुछ मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए चैतन्य चरितामृत में ईश्वर की परिभाषा दिया है, ईश्वर का मतलब क्या है वो बताते हैं कि सर्वशक्तिमंत जगतेक नाता निज प्रभु, तीन चीज बोलते हैं। सर्वशक्तिमंता का मतलब है सब शक्तियों का भंडार है भगवान, और जगतेक नाता बोलते हैं सारे जगत के एक ही स्वामी हैं, वो हैं ईश्वर परमेश्वर जो जगन्नाथ है, और निज प्रभु का मतलब है मेरे स्वामी। इस तरह का चेतना एक भक्त को होना चाहिए, भगवान जगत एक नाथ है, सर्वशक्तिमंत है, उसका मतलब है सूर्य चंद्र का उदय होते हैं भगवान की इच्छा से, हवा बहती है भगवान की इच्छा से, धान्य पैदा होते हैं भगवान की इच्छा से, बारिश होता है उनकी इच्छा से, उनकी दृष्टिपात से ही सब समृद्धि फैलता है इस दुनिया में, यह भक्त जानता है। सब शक्तियां उनके आधीनता में रहकर काम करती हैं, इस तरह समझता है। और निज प्रभु का मतलब है मेरे ही स्वामी हैं भगवान, और मेरे कोई स्वामी नहीं है, मेरे स्वामी एक ही हैं जो ईश्वर भगवान है। तो इसलिए नामामीश्वरम सचेत आनंद रूपम लसत कुंडल, ऐसे बताते हैं नमाम ईश्वरम। तो शुरुआत में ही बोल दिया उन्होंने कि ये यशोदा मैया हाथ में छड़ी लेकर भाग रहे हैं कृष्ण के पीछे, आज समझ सोचो कि ईश्वर नहीं है, ये माँ, ये माता बेटा का मामला नहीं है, ये भगवान है, ईश्वर है, ये पहले समझो, उसके बाद लीला कथा सुनाओ। तत्व समझो पहले, उसके बाद लीला सुनाओ, क्योंकि तत्व नहीं समझेंगे तो हम लीला सुनकर लाभ नहीं होगा हमें, इसलिए नमामि ईश्वरम ऐसे बताते हैं। और उनका शरीर किससे बनाया हुआ है, सच्चिदान सच्चिदानंद रूपम बताते हैं, उसके बाद बोलते हैं लीला के बारे में बताते हैं उसके बाद। इस तरह उसमें आप सुनेंगे, उधर बताते हैं वरम देव मोक्षम न, वो नहीं है, दूसरा क्या है, व्हाट इज इट कुबेर, नो वन वर्स बिफोर दैट, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाद्धिमग्नम कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञं येद्यक्षि दृश्यः। सुंदर श्लोक है, बता रहे हैं कि हे भगवान, मेरे मन में इच्छा है आपकी दृश्य को देखने के लिए, आपके सुंदर बाल गोपाल की रूप को देखने की इच्छा होता है हमारे मन में, लेकिन मैं अज्ञ हूँ, अज्ञ का मतलब है अज्ञानी पुरुष हूँ। इतना ही नहीं, ये बताते हैं कि हम इस संसार में हम मग्न हो गए, व्हाट इज द सेकंड लाइन, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन, दैट पैरा जस्ट नाउ यू सेड नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, आप दामोदर हैं, मतलब है आपको बांध दिया है यशोदा मैया ने, इसका मतलब नहीं है कि आप बंधे जाने वाले हैं। ऐसा देखा जाए तो कालिया नाग ने भी आपको बांधा, इसका मतलब नहीं कि आप उसके बंधन में आ गए, जल्द ही जल्द आप ऊपर उठ गए और कालिया के ऊपर नाचने लगे आप। इस तरह कालिया के बंधन में पड़ना भी आप स्वेच्छा से करते हो, इस तरह दामोदर बनकर अभी बंधे गए आप यशोदा के हाथ में, वो भी आप स्वेच्छा से किया है, कोई आपको बांध नहीं सकता। जैसे भागवत में भी बताया गया है, स्ववशेन कृष्णेनापि यस्येदं सेश्वरं वशे, ऐसे एक श्लोक में आता है, स्ववशेन कृष्ण अपने ही वश में है, किसी और के वश में नहीं है, ऐसे बताया है। तो यशोदा कृष्ण को बांधने के लिए एक रस्सी लेकर आई, लेकिन कृष्ण के मन में इच्छा था कि अरे अरे यशोदा बांध देगी मुझे तो माखन चोरी में कैसे करूंगा, मित्रों के साथ कैसे जाकर खेलूंगा, मैं शरारती कर नहीं पाएगा। तो इस तरह कृष्ण ने सोचा, तो उनके मन में जो इच्छा शक्ति थी वो समझ गया कि ये ईश्वर बांधे जाना नहीं चाहते हैं, इनको क्या किया जाए। तो तुरंत विभूति शक्ति आ गई, सत्य संकल्प शक्ति आ गई, दोनों आकर दोनों ने सोचा कि हम बांधने नहीं देंगे यशोदा को। तो यशोदा बांधने के लिए बार बार प्रयत्न किए लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि शक्तियां विभूति शक्ति मतलब जिस शक्ति से भगवान विश्व रूप को प्रकट करते हैं, वो बांधने नहीं दिया। लेकिन उस सेक्शन में सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान के निष्ठा को स्वनिष्ठा बोलते हैं और भक्त के निष्ठा को भक्त निष्ठा बोलते हैं। तो भक्त निष्ठा और स्वनिष्ठा के बीच में एक स्पर्धा होता है। तो भगवान की विभूति शक्तियां बांधने नहीं देते, लेकिन यशोदा की भक्त निष्ठा जो था, इतना गहरा निष्ठा था, परिश्रम किया उन्होंने। एक ऐसे एक सुंदर श्लोक आता है भागवत में, स्वमातुस्विन्न गात्रायाः, सब लोग बोले स्वमातुस्विन्न गात्रायाः वित्रस्त कबरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबन्धने नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यङ्गसंश्रयाः प्रसादं लेभिरे गोपी यतत् प्राप विमुक्तिदात् नायं सुखापो भगवान् देहिनाम गोपिकासुतः ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्तिमतामिह एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा वृत्त्यवश्यता स्ववशेन कृष्णेनापि यस्येदं सेश्वरं वशे। देखिए ये श्लोकों में ये चार श्लोक बोला मैंने, चारों के चारों में यशोदा की गुणगान किया गया है। ये बताया है पहले श्लोक में, पहले व्हाट इज द फर्स्ट श्लोक का ऐसे स्वमातु, स्वमातु सिन्न गात्राया, तो कृष्ण के माता यशोदा उसके माथे में पसीना छूटने लगे और कृष्ण जब तेज से भाग रहे थे यशोदा भी पीछे भाग रही थी। देखिए भगवान कृष्ण को योगी लोग अपने हृदय में बांधना चाहते हैं, बांध नहीं पाते हैं, लेकिन यशोदा ने बांधा। और ब्रह्मा और शिव जी भी कृष्ण के सामने वो झुकते हैं और ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब इस दुनिया में सब जीव बांधे जाते हैं कृष्ण से, लेकिन वो कृष्ण को ही बांध लिया यशोदा ने, इस तरह बताया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि यशोदा ने बांधा उनको, लेकिन कृष्ण बांधे जाने के लिए तैयार हो गए ऐसे बोला गया है। क्यों? दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, उन्होंने यशोदा में ऐसे एक परिश्रम देखा कि यशोदा मुझे अपने प्रेम के पास से बांधना चाहती है, तो प्रेम के पास से बंधे गए भगवान ऐसे। दृष्ट्वा परिश्रम कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने, कृपा के वश में आकर कृष्ण बंधे गए। देखिए कृष्ण जब भाग रहे थे यशोदा भी पीछे भाग रही थी, तो कृष्ण ने देखा कि क्या माता के भागने का आवाज ही नहीं आ रहा है, थोड़ा मैं मुड़कर देखूं, ऐसे मुड़कर देखा तुरंत पकड़े गए वो ऐसे। लेकिन इस तरह मुड़कर देखना भी और पकड़े जाना भी भगवान की इच्छा से ही होता है, नहीं तो ऐसे पकड़ नहीं जाते आसानी से भगवान। काले मन कितना भागा भगवान के पीछे, पकड़ नहीं पाया भगवान को, वो एक ही स्थान पर भाग रहा था, वो पीछे पकड़ नहीं पाया भगवान को ऐसे। बड़े बड़े योगी लोग भी तपस्या करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, जंगल में जाकर सालों साल पकड़ नहीं पाते हैं भगवान को। तो जो भगवान मन के तेजी से भी जल्दी भागने वाले हैं, अनेज देकम मनसो जबीयो नहीं न देवा आपनवन पूर्व मर्षत, ऐसे ईशोपनिषद में बताया गया है। सब देवता पीछे रह जाते हैं, भाग नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान आगे भागते हैं बहुत आसानी से। लेकिन इधर ऐसे तेजी से भागने वाले भगवान को भी पकड़ लिया यशोदा ने, इस तरह आचार्यगण गुणगान करते हैं। तो आचार्यों ने ये बात बताया है कि जो भगवान आप तक काम होते हैं वो स्तन्य काम बनते हैं, यशोदा के स्तनपान करना चाहते हैं यशोदा के बच्चे बनकर। जो भगवान विष्णु के रूप में प्रशांत होते हैं वो यशोदा के सामने अशांत हो गए वो ऐसे बताया है। और जो भगवान खाल को भी डराने वाले हैं वो यशोदा से डर के मारे भाग रहे हैं। जो भगवान अभय चरणारविंद अभय प्रदान करने वाले हैं सबको, वो भय के वश में आकर भागने लगे। इस तरह आचार्यगण विरोधाभास को बताते हैं कि परम सत्य जो भगवान माधव हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं, वो एक चोर बनकर दूसरों के घर में जाकर माखन की चोरी करते हैं। अगर अगर कोई करोड़पति हो क्या वो चोरी करेगा वो कभी? देखिए एक एक लंदन में वन ऑफ द ग्रेट किंग्स, उसका नाम भूल गया मैं, लेकिन एक बड़ा राजा था, उसका एक हैबिट था छोटे छोटे चीजों को चोरी करना। लेकिन था वो राजा, सारे देश का राजा था, लेकिन उसको हैबिट बन गया था ऐसे। तो लोग उसके मजाक उड़ाते थे उसको, देखो छोटे छोटे चीजों को दूसरों को चोरी करता था वो। लेकिन उसका एक व्याधि था वो, जो सब मेंटल प्रॉब्लम। लेकिन जब भगवान चोरी करते हैं वो जानबूझकर करते हैं भगवान, जो दूसरों के घर में जाकर जो माखन की चोरी, उनको प्रेम को बढ़ाने के लिए करते हैं ऐसे। माधव लक्ष्मी के पति बनने के बावजूद भी भगवान माखन की चोरी करते हैं, माखन की क्या कमी है उनके पास। इस तरह ये पहले श्लोक में बताया है कि भगवान ने उनके परिश्रम को देखकर अपने स्वनिष्ठा के द्वारा, स्वेच्छा के द्वारा भगवान बंधे गए ऐसे बोला है। इससे हम एक बात सीखते हैं कि भगवान की सुंदर रूप को दर्शन करना हो और उनके प्रेम से बांधना हो तो हमें परिश्रम करना पड़ेगा भक्तिमय जीवन में। और आगे बताते हैं, नेम अम्बिरिंचो न भवो। ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा को बोला गया है कि सदैव आदि गुरु, सारे ब्रह्मांड के वो गुरु हैं ब्रह्मा जी। और भगवान के नाभि से उगने वाले कमल में जन्म लेते हैं वो, इसलिए उनको स्वयंभू बोला गया है उनको। और वो ब्रह्मा चतुर्मुख वाले हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, और सब शास्त्र उनके हाथ में पहले मिलता है उनको, क्योंकि सरस्वती उनके ही धर्मपत्नी है। तो इतने होने के बावजूद भी ब्रह्मा जी जो हैं, उनको जो कृपा मिला वो उतना नहीं था जो जितना यशोदा को मिला, ऐसे बताते हैं। नेम अम्बिरिंचो न भवो। शिव जी जो हैं, जिनको बोला जाता है कि वो भगवान के प्रिय सखा हैं, प्रियस्य सख्युः क्षण संगमेन, ऐसे आता है प्रचेतों के सेक्शन में, वो प्रियस्य सख्युः। ब्रह्मा जी भगवान के दास हैं, दास्य रस में हैं, शिव जी भगवान के साख्य रस में हैं, और वो वैष्णवाना में यथाशंभु बोला गया उनके बारे में, उनको भी इतना कृपा नहीं मिला बोला गया। इतना ही नहीं, श्रीर अप्यंग संश्रिता संशया, श्री जो होती है लक्ष्मी, वो भगवान के छाती में ही रहती है एक सोने के बाल के रूप में, उनको भी इतना कृपा नहीं मिला जितना यत्त प्राप विमुक्ति दात, जो यशोदा मैया जिनको विमुक्ति का मतलब है प्रेमा भक्ति, जिनको प्रेमा भक्ति प्राप्त हुआ यशोदा का, उतना इन लोगों को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे बताते हैं। और आगे के श्लोक जो बोला हमने उसमें क्या बोलते हैं, व्हाट वाज द थर्ड श्लोक आई वाज सेइंग, ओह नो दैट कम्स वन लेटर, नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका, आई थिंक आई टोल्ड दैट फोर्थ, आई टोल्ड दैट द थर्ड वन। तो नायम सुखापो भगवान, उसमें बताते हैं कि इस दुनिया में जो लोग देही नाम बोलते हैं, देही नाम का मतलब है सुबह सुबह उठते हैं वो कुत्ते को साथ में लेकर चलते हैं, वो देही नाम का मतलब है कुत्ते के साथ पहचानते हैं वो, इस तरह घर गाड़ी मकान धंधा दुनिया के ऐश्वर्य इत्यादि से पहचाने वालों को देही नाम बोलते हैं। उनको तो भगवान का स्मरण कभी लेश मात्र भी होता नहीं है, उनको बुलाओ सत्संग में आओ बोलते हैं कि फ्रेंड आए हैं घर में अभी टाइम नहीं है बोलते हैं, कभी कभी आओ बोलते हैं हम फुर्सत नहीं मिलता हमको बोलते हैं। तो देही नाम ऐसे लोगों को मिलने वाले नहीं है भगवान आसानी से करोड़ों जन्म तक, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं जो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ गए उनको भी नहीं मिलते भगवान बोलते हैं। देही नाम, ज्ञानी नाम और आत्मभूता नाम का मतलब है तीन लोग, ब्रह्मा शिव और लक्ष्मी, उनको भी भगवान उतना कृपा नहीं दिया है जितना भक्ति मताम है। भक्ति मताम का मतलब है जो लोग यशोदा के अनुयायी बनते हैं उनको भगवान मिलते हैं। इसका मतलब है हमें अगर भगवान को प्राप्त करना हो तो ब्रजवासियों के अनुयायी बनकर भक्ति करना पड़ेगा हमें। इसलिए देखिए श्रीमती राधा रानी, यशोदा मैया और जैसे अर्जुन, इस तरह के महान भक्तों के अनुयायी बनकर और इस तरह गुरु परंपरा में आने वाले गुरुओं के अनुयायी बनकर, श्रील प्रभुपाद के अनुयायी बनकर, हमारे गुरु महाराज के अनुयायी बनकर, इस तरह भक्ति में डूब कर भक्ति करने वाले भक्तों के अनुयायी बनकर हमको भी भक्ति प्राप्त हो सकता है, ऐसे बताते हैं। ना यम सुखापो भगवान देहि नाम गोपिका सुतः, ज्ञानी नाम च आत्मभूता नाम यथा भक्ति मताम इह, ऐसे बताते हैं। और एवं संदर्शिता ही अंग हरिणा वृत्ति अवश्यता, मैं मेरे वृत्तियों का वश में आ जाता हूं, ये बात को पुष्टि करने के लिए भगवान ने लीला की, ऐसे बताते हैं। तो भगवान सारे दुनिया को घोषणा करना चाहते हैं कि हे दुनिया वाले, आप सोचते हो कि मैं पकड़ में आता नहीं, मैं आपको दर्शन नहीं देता, ऐसा मत सोचो। तुम प्रेम से पुकारोगे तो मैं आ ही जाऊंगा, तुम प्रेम पार से मुझे बांधने के लिए प्रयत्न करो, मैं बंधे जाऊंगा, इस तरह भगवान बताते हैं। तो भगवान यशोदा के हाथ से बंधे गए और यशोदा जाने के बाद भगवान ने सोचा कि मैं यशोदा को ऋणी हूँ, क्योंकि यशोदा ने जो माखन बनाया था उसको तोड़ दिया वो गड़ा को, इसलिए मैं ऋणी बन गया, इसलिए बांध दिया उन्होंने, मैं ऋण को कैसे चुकाऊं, सोचा भगवान ने। तो देखा कि उनके घर के पीछे जो दो बड़े पेड़ खड़े थे, तो सोचा कि इन दो पेड़ों को तोड़कर मैं नलगुरु मणिग्रीव का उद्धार करूंगा, इससे हमारा ऋण चुक जाएगा, ऐसे सोचा भगवान ने। सोचकर दोनों पेड़ों के बीच में गए ऐसे। तो भगवान, इसलिए उनको बोला गया कि कुबेर आत्मा जो बद्ध मूर्ति यद्वत। देखिए भगवान का नाम है बद्ध मूर्ति, क्यों बद्ध मूर्ति है, बंधा हुआ मूर्ति है भगवान, वो बंधे गए हैं। बंधे हुए भगवान ने नलकुर मणिग्रीव को बंधन से छुड़वाया, ऐसे बताया जा रहा है। देखिए इस दुनिया में अगर कोई आपको कभी कभी चार पांच लोगों को चोर लोग पकड़ लेते हैं और उनके हाथ को पीछे बांध देते हैं, पांव को भी बांध देते हैं, मुंह में कुछ कपड़े डाल देते हैं, कोई चिल्ला भी नहीं पाएगा, खुद को छुड़वा नहीं पाएगा। कैसे व्यक्ति और एक व्यक्ति को छुड़वा पाएगा? वो बंधा हुआ व्यक्ति इस दुनिया में किसी को बंधन से छुड़वा नहीं सकता है। लेकिन भगवान जो बंधे गए हैं यशोदा के रस्सी से, उन्होंने छुड़वाया किसको? नलकुर मणिग्रीव को। क्योंकि भगवान का बंधन भी उनके स्वेच्छा से होता है, भगवान कभी बंधे नहीं जाते हैं, अपने स्वेच्छा से होता है। इसलिए कथा कथित बद्ध अवस्था में भी कुबेर आत्मा जो बद्ध मूर्ति यद्वत त्वया मोचित भक्ति बाजो कृतच। हे भगवान, देखो आपने इन लोगों को ये पेड़ के शरीर से आपने इनको छुड़वाया, इतना ही नहीं आप इनको संसार से भी छुड़वाया, पूरा संसार बंधन ही कट गया इनका। इतना ही नहीं भक्ति बाजो कृतच, भक्ति भी दे दिया आपने उनको। इसलिए जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम। ये जन्म बंध विनिर्मुक्ता होना एक स्टेप है, लेकिन भगवान के धाम में घुसना दूसरा स्टेप है। वो जैसे बोलते हैं कि रॉकेट भूमि से निकल गया, बोलते हैं ठीक है निकल गया, लेकिन अगर कुछ उतरने के लिए कुछ ग्रह नहीं मिला तो वापस लौटा जाएगा वो, है ना। इसलिए जन्म बंध विनिर्मुक्ता का मतलब है ब्रह्म ज्योति तक जाना, पदम गच्छन्ति नामयम मतलब भगवान के धाम के अंदर प्रवेश करना। दोनों अलग अलग बोलते हैं भगवान, पदम गच्छन्ति नामयम ऐसे बोलते हैं। इस तरह नलकुर मणिग्रीव को भी भगवान ने संसार से भी उद्धार किया, ऐसा नहीं कि पेड़ के शरीर से उद्धार किया, पेड़ के शरीर से भी उद्धार, संसार से भी विमोचन, साक्षात भक्ति बाजव कृत वो भी प्रदान किया उनको। तथा प्रेम भक्ति स्व कामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरेह। हे भगवान, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, लेकिन ये सुंदर स्वरूप जो है आपका बाल गोपाल का, ये मैं देखना चाहता हूँ, जो माखन छोर का सुंदर रूप है, ये बाल गोपाल का रूप मेरे चित्त में बस जाए और हमेशा नित्य निरंतर मैं आपका स्मरण करूँ। देखिए इस तरह अलग अलग भक्तों ने भगवान के अलग अलग रूप को देखने की इच्छा प्रकट की है। जैसे ब्रह्मा जी अपने प्रार्थना में सर्वप्रथम एक श्लोक बोलते हैं, नौ मेंढ्यते ब्रवपुषे तडिदं बराया कुंजावतं सपरिपिच्छलसन मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। एक सुंदर भगवान के स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। बोलते हैं कि भगवान, ये ब्रह्म विमोहन लीला आपने प्रकट कराया, उसके बाद अभी जो देख रहा हूँ आप एक नन्हे मुन्ने बालक के रूप में हाथ में कवल वेत्र आप दही बात को लेकर ऐसे ही आप खोज रहे हो बच्चों को, अपने मित्रों को खोज रहे हो, और मुरली एक और मुरली है, दूसरी ओर ये बफलो हॉर्न है, क्या बोलते हैं उसको, बुगल बुगल बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको, सिंगा, हाँ वो आपने पहना है इसे। तो ये सुंदर स्वरूप को मैं नित्य निरंतर में दर्शन करता रहूं, ऐसे ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। इस तरह गोपियां प्रार्थना करते हैं भगवान को, हे भगवान, सुबह सुबह आप अपने मित्रों के साथ निकलते हो नंद भवन से जंगल में गोचरण लीला करने के लिए, तभी गोपियां देख रही हैं, एक दूसरे को बोल रही हैं, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम बिभ्रत बास कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणोर अदर सुदया पूरयन गोप वृंदैहि वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बता रहे हैं कि सुबह जाते समय भी आते समय भी कृष्ण के सुंदर वर्णन किया जा रहा है कि आप मोर पंख पहनते हो आपके घुंघराले बालों में, हाँ और आप सुंदर वैजयंती माला पहनते हो और हाथ में आपके पास मुरली है, मुरली बजा रहे हो बहुत मधुर वाणी से हैं, और सर गाय बछड़े आपके इर्द गिर्द आपके साथ जंगल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और आपके आसपास में गोप बालक आपके गुणगान कर रहे हैं आपके लीलाओं का, ये इस तरह की माहौल, सुंदर माहौल को हम देखते हैं तो गोपियां बोल रहे हैं कि ये कितना कितना सुंदर वातावरण है, लेकिन इस तरह ये परम भाग्य मिला है ये गोप बालकों को आपके साथ जंगल में विहार करने के लिए ऐसे। तो इस तरह वो रूप देखना चाहती हैं सब गोपियां जो कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, अपने मित्रों के साथ है, गाय बछड़ों के साथ है, आगे आगे गया पीछे पीछे बाल है, ऐसे ये देखना चाहती हैं गोपियां ऐसे। इस तरह आप देखेंगे मार्कंडेय ऋषि ने एक बाल गोपाल का एक रूप देखा उन्होंने, है ना, वटपत्रशाही बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी। इस तरह तुकाराम जी ने विठल का रूप देखा ऐसे, भगवान अपने हाथ रखते हुए ऐसे वो रूप देखना चाहा। और भीष्म पितामह ने ये रूप देखना चाहा जिसमें भगवान अपने हाथ में एक रथ का पहिया लेकर भाग रहे हैं उनकी ओर, उनके माथे में पसीना छूट रहा है और अंगवस्त्र नीचे गिर रहा है, भगवान के आंख में चिंता है अपने भक्त अर्जुन को बचाने की, इस तरह भगवान वेग से दौड़ रहे हैं एक सिंह जैसे। उसको देखकर प्रभावित हुए भीष्म पितामह और उन्होंने बोला कि हे भगवान, ये चित्र छाया मेरे मेरे हृदय में छवि बन जाए, हमेशा के लिए हम आपका स्मरण करें इस तरह। और इस तरह अलग अलग भक्तों ने अपने इच्छा को प्रकट किया है, जैसे कोलवेच श्रीधर ने बोला निमाय पंडित को, हे निमाय पंडित, मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन में, क्या चाहिए मुझे, सिर्फ आपके निमाय पंडित के रूप में आपके चंद्रमा जैसे चेहरा को लेकर आप गुंगराले बालों के साथ आप ऐसे एक जनेऊ पहनकर एक ब्राह्मण लड़के के रूप में हाथ में किताबों को लेकर अपने विद्यार्थियों के साथ जिस तरह ही एक चंद्रमा के आसपास नक्षत्र रहते हैं, इस तरह आप अपने मित्रों के साथ जब इस तरह सड़क में चलते हो और मेरे दुकान में आकर आप ये केले के पत्ते वगैरह खरीदने में बार्गेन करते हो, वर से बार्गेनिंग बोल भाव करते हो, इस तरह का आप हमेशा हमारे साथ लीला करते रहे जन्म जन्म में, मुझे दूसरा और कुछ नहीं चाहिए बोला। तो हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ जब हमने सुना, वो 2 घंटा हर दिन आर्ग्यूमेंट करते थे वो उनके साथ, और वो चाहते थे कि एक दिन के लिए नहीं, हर दिन आने ये भगवान आए मेरे पास और हर जन्म जन्म में आए, ऐसे उन्होंने इच्छा किया ऐसे। तो इस तरह भगवान के सुंदर स्वरूप जब भक्त के चित्त में बस जाता है और भगवान के नामों का उच्चारण बहुत तीव्रता से होता है, तभी सब दुनिया के मल निकल जाता है हमारे चित्त से, खास करके रजस और तमस का मल निकल जाता है, और शुद्ध विशुद्ध भावना के साथ एक भक्त अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, उसको ऋषिकेश सेवन बोलते हैं। तो इंद्रिय भी शुद्ध हो जाते हैं, मन शुद्ध हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, तो बुद्धि एकांत बुद्धि हो जाता है, एकांत भक्ति जागृत होता है भक्त के जीवन में। तो यही जीवन का लक्ष्य है जो इधर बताया जा रहा है, एकांति नो यस्य न कंचनार्थम वांचन्ति ये वै भगवत प्रपन्नाः अति अद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्र मग्नाः। तो आपके चरित्र जो है अद्भुत हैं, मंगलमय हैं, प्रातः स्मरणीय हैं, और आपके भक्तों को परम पद को प्राप्त कराते हैं। इस तरह के आपके शुभ चरित्रों को हम पढ़े, सुने, श्रवण करें, उनका उसमें रमें और दूसरों को रमाए, इस तरह करने से हम आनंद के समुद्र में हमेशा डूब कर रहेंगे। और इस तरह के भगवान के साथ संबंध को जिस भक्त ने स्थापित कर दिया हो, उस भक्त के जीवन में किसी भी तरह का दुख नहीं है। इस तरह प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि तद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त है, मेरे चित्त को मैंने मग्न कर दिया। ये गीत में भी आता है, दामोदर अष्टक में भी आता है, व्हाट इज द सेकंड पैरा, मज्जंतम, व्हाट इज द मज्जंतम, इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेम तस्तं शतावृति वन्दे. सेकेण्ड् लैन् वाट् सेकेण्ड् लैन् सेकेण्ड् लैन् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तं. निमज्जनं मतलब् ओ हि चीस् त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्नचित्तः तत् मग्न इस् काल् निमज्जन्तम् उदर् वि वै बलाजरः उदर् इसर् प्रह्लाद ने बोला भक्तिं मुहु प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो. उस् श्लोक में बताते हैं भूयादनन्त महताम् अमलाशयानां येनाञ्च सोल्बणमरु व्यसनं भवाब्धिं नेशे भवत् गुणकथामृत पान मत्तः. ऐसे बोलते हैं मैं आपके गुण कथामृत में मैं मत्त हो गया हूँ. जैसे एक मधुमक्खी शहद को पीकर मत्त हो जाता है, इस तरह आपकी कथा सुनकर हम इतने मत्त हो गए इस दुनिया के चिमटी हमको लगता ही नहीं. दुनिया का क्या चिमटी है? त्रिविध ताप. त्रिविध ताप सब जीवों को सताते हैं लेकिन हमको सताता नहीं है, क्योंकि त्रापत्रयोन मूलनम तापत्रयोन मूलनम. श्रीमद भागवते महामुनि कृते बोलते हैं ना वो क्या श्लोक है, धर्म प्रोजित कैतवत्र प्रमो निर्मसराणाम सताम वेद्यम वाद्य वाद्य अस्तवत्र शिवदम तापत्र उन्मूलनम. वो तीन त्रिविध ताप को उन्मूलन कर देता है वो. इस तरह का भगवान की कथा श्रवण है इसे. तो इस तरह की कथा श्रवण से स्मरण होता है. श्रवण करते करते हमें कीर्तन करने की रुचि जागृत होता है, और श्रवण और कीर्तन दोनों करने से स्मरण आता है. और बार बार स्मरण जो भक्त करेगा भगवान के दिव्य रूप का, गुण का, लीला का इत्यादि का स्मरण करते करते उसमें रमेगा, और इस तरह राम राम कर उसके अंदर तीन गुणों का प्रभाव निकल जाता है, वो ग्रिप निकल जाता है उसका. जैसे अगर चोर भागता है तो पुलिस उसको तेजी से पकड़ते हैं उसको, लेकिन अगर कोई चोर चोरी करना ही छोड़ दिया, सज्जन बन गया, तो पुलिस पकड़ेंगे नहीं उसको. इस तरह तीन गुण छोड़ देते हैं जो भगवान के भक्त बन गया उसको. तो यही मार्ग है, एकांतम भक्ति ही एकमात्र मार्ग है तो भगवान को प्राप्त करने के लिए और भगवान की लीला के अंदर प्रवेश करने के लिए. तो इस तरह ये इच्छा कर रहा है गजेंद्र कि हम भी इस तरह भगवान की लीला में प्रवेश कर ले. तो ये हाथी का शरीर तो अज्ञानता वाली शरीर है, तो शरीर को बचाकर मैं क्या करूंगा, ये तो मर मिटने वाली पदार्थ है भौतिक शरीर. तो हे भगवान हमारे शरीर मिटने दे, हमारे शरीर को मरने दीजिए, लेकिन आप एक वैकुंठ शरीर दे दीजिए हमको. इस तरह भगवान ने उनको एक चतुर्भुज रूप दे दिया, एक विष्णु दूत का शरीर देकर भगवत धाम में लेके गए भगवान गजेंद्र को ऐसे, ताकि वो नित्य निरंतर भगवान की सेवा करने के मौका मिले उनको ऐसे. तो इस तरह ये कार्तिक महीना जो है बहुत महत्वपूर्ण महीना है, जिसमें हर दिन भगवान ने कुछ ना कुछ लीला किया है इस महीने में. तो इस तरह भगवान क्यों लीलाएं करते हैं, ताकि उनके भक्त इन लीलाओं का चर्चा करे, श्रवण करे, मनन करे. इस तरह स्मरण करते करते हम हमारी संबंध जो है भगवान के साथ उसको हम जागृत करें. तो भगवान शिष्य राधा माधव के रूप में आए हैं इधर कानपुर में. तो इस तरह भगवान अलग अलग श्री विग्रहों के रूप में आकर जो उन श्री विग्रहों की सेवा करते हैं उनके मन को चोरी कर लेते हैं भगवान. इसलिए भगवान का नाम है मनोहर, होते हैं ना मन को हरण करने वाले हैं वो, मनोहर है, चित्त चोर है. तो इस तरह के भगवान जिस अर्चा विग्रह के रूप में आते हैं उनकी दंडवत प्रणाम करके, उनकी प्रदक्षिणा करके, उनके लिए नाच कर, गा कर, कीर्तन करके, कथा करके धीरे धीरे भक्त भगवान के सुंदर स्वरूप को अपने हृदय में पिटा सकता है. और इस तरह भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है तो हम ये इस दुनिया के गंदगी खास करके तदा रजस्तमो भवा काम लोभा आदेश चेत ये तेरणाभिदम स्थितम सत्वे प्रसिद्धि ऐसे बताते हैं. तो ये सर्वोच्च लक्ष्य है हमारे इस्कान संस्था का. प्रभुपाद जी अपनी किताबों को इस कारण के लिए लिखा है कि हम कृष्ण की ओर हम आकर्षित हो जाए और हमारे भाव बंधन छूट जाए और हम नित्य सेवा में जुड़ जाए। और ये कार्तिक महीना श्रेष्ठ महीना है, तो हर दिन हम भगवान के लिए दामोदर दिया हम जलाते हैं। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बताते थे कि भक्त लोगों को ये लीला बहुत आनंद आता है भक्तों को, क्योंकि इस सारे महीने भगवान बंधे रहते हैं। ऐसे आप देखते हैं उधर एक महीने के लिए अरेस्टेड बांध कर रखी है यशोदा ने। ऐसे वो बता रहे थे कि भगवान ने हमको बांध दिया इस दुनिया में। भक्त लोग जब देखते हैं भगवान भी बंधे गए, उनको अच्छा लगता है भक्तों को। ऐसा नहीं कि हमको बांध कर रखा, आपको भी बांध कर रखा है अभी। ऐसे बता रहे लेकिन समझना चाहिए भगवान यमपाश से, कर्मपाश से, भवपाश से बंधे नहीं जाते हैं, सिर्फ प्रेम पाश से बंधे जाते हैं। कृष्ण भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की।